अध्याय तीन। प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वो मेरे लिए मार्ग तैयार करे। वो प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर आ जाएगा। देखो विधान का वो दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। कौन उसके आगमन के दिन का सामना कर सकेगा? जब वो प्रकट होगा तो कौन टिकेगा? क्योंकि वो सुनार की आग और धोबी के खार के सदृश है। वो चांदी गलाने वाले और शोधन करने वाले की तरह बैठकर लेवी के पुत्रों को शुद्ध करेगा और सोने चांदी की तरह उनका परिष्कार करेगा। तब वे योग्य रीति से ईश्वर को भेंट चढ़ाएंगे और प्रभु ईश्वर प्राचीन काल की तरह यूदा और यरूशलेम की भेंट स्वीकार करेगा। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, मैं अदालत में तुम्हारे प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। मैं इन सभी लोगों के विरुद्ध तुरंत साक्ष्य दे दूंगा। ओझाओं, व्यभिचारियों, झूठी शपथ खाने वालों, मजदूरों को उचित मजदूरी न देने वालों, विधवाओं और अनाथों को सताने वालों, प्रवासियों के अधिकार छीनने वालों और मुझसे न डरने वालों के विरुद्ध। मंदिर की भेंटें। मैं प्रभु ईश्वर बदलता नहीं, इसलिए याकूब की संतान तुम्हारा विनाश नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के समय से तुम मेरी विधियों की अवहेलना कर उनका पालन नहीं करते आए हो। तुम मेरे पास लौट आओ तो मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यह विश्व मंडल के प्रभु की वाणी है। तुम पूछोगे, हम कैसे लौटें? क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझको ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे, हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हां तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटें भंडार के पास लाओ जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्व मंडल का प्रभु ये कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करें, जिससे दाखबारियों की दाख लताएं अच्छे फल देती रहें। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, सभी राष्ट्र तुमको धन्य कहेंगे, क्योंकि तुम्हारा देश एक मनोहर देश होगा। धर्मियों की प्रतिष्ठा। प्रभु कहता है, तुम लोगों ने मेरे विषय में कठोर शब्द कहे हैं, फिर भी तुम पूछते हो, हमने आपस में तेरे विरुद्ध क्या कहा है? तुम लोगों ने ये कहा, ईश्वर की सेवा करना व्यर्थ है, उसकी आज्ञाओं का पालन करने से और विश्वमंडल के प्रभु के लिए टाट के कपड़े पहनने से हमें क्या लाभ? हम तो घमंडियों को धन्य समझते हैं। जो बुराई करते हैं वे फलते फूलते हैं, और जो ईश्वर की परीक्षा लेते हैं उन्हें कोई हानि नहीं होती। तब प्रभु भक्तों ने आपस में बातें की। प्रभु ने ध्यान देकर उनकी बातचीत सुनी और उसके सामने प्रभु भक्तों और उसके नाम पर श्रद्धा रखने वालों के विषय में एक स्मारिका लिखी गई। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, जो दिन मैंने निश्चित किया उस दिन वे मेरे अपने होंगे, और जिस तरह कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र पर दया करता है, उसी तरह मैं भी उन पर दया करूंगा। तब तुम लोग, धर्मी और विधर्मी, ईश्वर की सेवा करने और उसकी सेवा नहीं करने वाले दोनों का भेद पहचानने लगोगे, क्योंकि वो दिन आ रहा है। वो धधकती भट्टी के सदृश है, सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, वो दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका न तो कोई डंठल रह जाएगा और न जड़ ही। किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेंगी। तब तुम उसी प्रकार उछलने लगोगे जैसे बछड़े बाड़े से निकलकर उछलने कूदने लगते हैं। विश्वमंडल का प्रभु ये कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांवों के नीचे रौंदोगे। परिशिष्ट। मेरे सेवक मूसा के विधि विधान को स्मरण करो, जिसके द्वारा मैंने होरेब पर्वत पर समस्त इज़राइल के लिए रीति रिवाज निर्धारित किए थे। देखो, उस महान एवं भयानक दिन के पहले, प्रभु के दिन के पहले, मैं नबी एलियाह को तुम्हारे पास भेजूंगा। वो पिता का हृदय पुत्र की ओर अभिमुख करेगा और पुत्र का हृदय पिता की ओर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आकर देश का सर्वनाश कर दूं।